ہم نے سورت بقرہ کے آغاز میں ایک دعا کی تھی کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. اس میں سے اللہ تعالیٰ نے ذالک الکتاب لا ریب فیہ کہہ کر قرآن پاک شروع کروایا. سورت بقرہ میں جس قوم کا تذکرہ تھا جس کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے, کچھ اپنی عادات کی وجہ سے اس کا بعض جگہ شمار مغضوب علیہم میں ہوا. سورت بقرہ میں ہی دو دفعہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ضربت علیہم الذل والمسکنہ. اب دعا کا جو دوسرا حصہ تھا ولدالین, ان عقائد کو پروموٹ کرنے والی ایک قوم کا ذکر اگلی صورت میں آئے گا, کیونکہ انہوں نے علم حاصل کیے بغیر اللہ کے نبیوں کے بارے میں خود ساختہ عقائد کھڑے کیے. تو شروع کریں گے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بڑی بڑی صورتیں پڑھنے والا بھی اور اس پہ عمل کرنے والا بھی بنا دے. صورت کا نام آل عمران ہے, عمران کا گھرانہ یا عمران کی یہ فیملی کہہ لیجئے. عمران کون تھے؟ کیونکہ اس بارے میں رسولوں کے ساتھ تعلق محسوس کرنا ہے تو تھوڑا سا اس کو محسوس کیجئے گا. رسول ہمارے محسن ہیں, رسولوں نے اللہ کا پیغام ہمارے تک پہنچایا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آنے والے آخری نبی تھے, ان کے خاندان کا ذکر ہے اس میں. ماں کا نام حضرت مریم, نانی کا نام حنہ علیہ السلام اور نانا کا نام عمران تھا. یعنی اب میں اور آپ رسولوں کے ایک ایسے خاندان سے ملنے والے ہیں کہ جن کو جاننے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ جب اللہ بڑی بڑی آزمائشوں میں انسان کو ڈال دے تو اس کے اوپر کیسے راضی رہنا ہے, اور خاص طور پہ پھر اس میں عقائد کی اصلاح موجود ہے. اسی خاندان کے دو افراد حضرت زکریہ علیہ السلام تھے جو رشتے میں حضرت مریم کے خالو تھے. انہی کا بیٹا جو ان کو بہت بڑھاپے میں ملا حضرت یحییٰ علیہ السلام تھے, ان کا تذکرہ ہم اس میں پڑھیں گے. آپ دیکھیں کہ ہم اس خاندان کو بہت کم جانتے ہیں. ہمیں ہیروز کے نام, گلوکاروں کے نام, اداکاروں کے نام, کرکٹرز کے نام شاید زیادہ یاد ہوں, تو انشاءاللہ اس دفعہ پڑھتے وقت اس چیز سے بھی تعلق جوڑنا ہے. ہم اس کو بھی اسی طرح سے پڑھیں گے. شروع سے لے کر سورت کو پڑھتے ہوئے جو چیز آپ نے میں نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے وہ کیا ہے کہ ہم نے اس پہ عمل کرنا ہے. ٹاپک لکھ لیجئے سورت آل عمران, اور اس کو سورت آل عمران اور بقرہ کے مجموعے کو الزہراوین کہا جاتا ہے. دو چمکتی ہوئی صورتیں. آپ نے فرمایا کہ یہ صورتیں پڑھا کرو, جادوگر اس کتاب نہیں رکھتے. قیامت کے دن یہ صورتیں پڑھنے والوں کے اوپر سایہ کریں گی. اور اس صورت کے آغاز میں توحید باری تعالیٰ اور انسان کے لیے ہدایت کا انتظام, اس موضوع کو آپ دیکھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. نوٹ کیجئے گا, سورت بقرہ کی طرح سورت آل عمران بھی الف لام میم سے شروع ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں, وہ زندہ اور سب کا نگہبان ہے, جس نے آپ پر حق کے ساتھ اس کتاب کو نازل فرمایا جو اپنے سے پہلے کی تصدیق کرنے والی ہے, اسی سے پہلے تورات اور انجیل کو اتارا تھا, اس سے پہلے لوگوں کو ہدایت کرنے والی بنا کر, اور قرآن بھی اسی نے اتارا. جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے کفر کرتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے, اور اللہ تعالیٰ غالب ہے, بدلہ لینے والا ہے. یقیناً اللہ تعالیٰ پر زمین و آسمان کی کوئی چیز پوشیدہ نہیں. سوچیے, کوئی بات کر کے کہتی ہوں کسی کو نہ بتانا, اچھا یہ اس سے چھپ جائے, اللہ سے نہیں چھپ سکتا کوئی معاملہ. وہ ماں کے پیٹ میں تمہاری صورتیں جس طرح کی چاہتا ہے بناتا ہے, اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں, وہ غالب ہے اور حکمت والا ہے. وہی اللہ تعالیٰ ہے جس نے آپ پر کتاب اتاری جس میں واضح مضبوط آیات ہیں جو اصل کتاب ہیں, اور بعض متشابہ آیات ہیں بس جن کے دلوں میں کجی ہے, یعنی ٹیڑھا پن ہے, کروکڈ ہارٹس. وہ تو اس کی متشابہ آیتوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں فتنے کی طلب اور ان کی مراد ان کی جستجو کے لیے, حالانکہ ان کی حقیقی مراد کو سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا. اور پختہ اور مضبوط علم والے یہی کہتے ہیں کہ ہم تو ان پر ایمان لا چکے ہیں, یہ ہمارے رب کی طرف سے ہیں, اور نصیحت تو صرف عقل مند حاصل کرتے ہیں. اور دعا کیا زبان پہ آتی ہے, ان کی عقل مندی کی دلیل. لکھ لیجیے عقل مند لوگوں کی دعا, ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب, ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. اور پختہ اور مضبوط علم والے یہی کہتے ہیں کہ ہم تو ان پر ایمان لا چکے ہیں, ये हमारे रब की तरफ से हैं और नसीहत तो सिर्फ अकलमंद हासिल करते हैं। अब आपने इस पे आमीन कहना है हर दुआ पे ऊंची आवाज़ में। ए हमारे रब, हमें हिदायत देने के बाद हमारे दिल टेढ़े ना कर दे और हमें अपने पास से रहमत अता फरमा, यकीनन तू ही बड़ी अता देने वाला है। ए हमारे रब, तो यकीनन लोगों को एक दिन जमा करने वाला है जिसके आने में कोई शक नहीं, यकीनन अल्लाह ताला वादा खिलाफी नहीं करता। क्या पता चला हिदायत के बाद गुमराह हो जाना ऐसे ही है जैसे माल दौलत वाला होने के बाद कंगला हो जाना, शाही के बाद फकीरी कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। अमीरी में ज़िंदगी गुजरी हो तो गुर्बत का तसव्वुर भी मुमकिन नहीं है। आपको मुझे अल्लाह ने हिदायत का रास्ता दिखा दिया। हमने दो पारे क्या तीसरा पारा भी आधे के करीब पढ़ लिया। दुआ कीजिए 30वें पारे तक पहुँचूँ, एक भी छुट्टी ना हो, एक भी लफ्ज़ मेरा मिस ना हो और अल्लाह ताला आपको मुझे इसकी तौफीक अता फरमाए। फिर इसके बाद देखिए आयत नंबर 10 से एक बड़ा ख़ूबसूरत टॉपिक शुरू हो रहा है। टॉपिक लिख लीजिए मरगूबात दुनिया से आखरत की मरगूबात बेहतर है। मुश्किल लफ्ज़ आसान करती हूँ, यानी दुनिया की वो चीज़ें जिनमें तुमको रग़बत है ना, माल औलाद घर गाड़ी कोठी बंगला सेलफोन और सब कुछ, इससे ज़्यादा खूबसूरत चीज़ें अल्लाह ने आपके मेरे लिए आखरत में रखी हैं। आयत 9 से लेकर आगे ये टॉपिक चलता जाएगा, आयत नंबर 10 से शुरू होगी ये बात। इन्नल्लज़ीना कफरू लन तुग़निया अन्हुम अमवालुहुम वला औलादुहुम मिनल्लाहि शैया वौलाइका हुम वक़ूदुन नार। काफिरों के माल और इनकी औलाद अल्लाह ताला के अज़ाब से छुड़ाने में कुछ काम ना आएंगी, ये तो जहन्नुम का ईंधन है। क्या फ़ायदा हुआ ऐसी चीज़ों का जो क़्यामत के दिन इंसान के काम ना आई। जैसा आले फ़िरौन का हाल हुआ और इनका वो जो इनसे पहले थे, उन्होंने हमारी आयतों को झुटलाया, फिर अल्लाह ताला ने भी इन्हें इनके गुनाहों पर पकड़ लिया और अल्लाह ताला सख्त अज़ाब देने वाला है। काफिरों से कह दीजिए अनकरीब तुम मगलूब किए जाओगे और जहन्नुम की तरफ जमा किए जाओगे, वो बड़ा बुरा ठिकाना है। यकीनन तुम्हारे लिए इबरत की निशानी थी इन दो जमातों में जो आपस में उलझ गई थीं। एक जमात अल्लाह की राह में लड़ रही थी और दूसरा गिरोह वो काफिरों का था। वो इन्हें अपनी आंखों से अपने से दुगना देखते थे और अल्लाह ताला जिसे चाहे अपनी मदद से कवी करता है। यकीनन इसमें आंखों वालों के लिए बड़ी इबरत है। रग़बत की जाने वाली चीज़ों की मोहब्बत लोगों के लिए खूबसूरत कर दी गई, जैसे औरतें और बेटे और सोने चांदी के जमा किए हुए खजाने और निशानदार घोड़े, आज क्या हैं गाड़ियाँ, ब्रांडेड गाड़ियाँ और चपाए और खेती। लेकिन ज़ालिका मताउ दुनिया, ये दुनिया की ज़िंदगी है। यानी जब आप इन चीज़ों को देखें तो हमेशा याद रखें कि ये चंद दिन की चीज़ें हैं। ज़ालिका मताउल हयात दुनिया वल्लाहु इंदहु हुस्नुल मआब, ये तो दुनिया की ज़िंदगी का सामान है और लौटने का अच्छा ठिकाना तो अल्लाह ताला ही के पास है। आप कह दीजिए क्या मैं तुम्हें इससे बेहतर चीज़ ना बताऊं? तकवा वालों के लिए इनके रब के पास जन्नतें हैं जिनके नीचे नहरें बह रही हैं जिनमें वो हमेशा रहेंगे और पाकीज़ा बीवियाँ, और अल्लाह ताला की रजामंदी है, सब बंदे अल्लाह ताला की निगाह में हैं। जो कहते हैं कि हमारे रब हम ईमान ला चुके इसलिए हमारे गुनाह माफ़ फरमा और हमें आग के अजाब से बचा, जो सब्र करने वाले सच बोलने वाले और फरमा बरदारी करने वाले और अल्लाह की राह में ख़र्च करने वाले और पिछली रात को बख्शिश मांगने वाले हैं। दुआ कीजिए अल्लाह हमें ऐसे लोगों में शामिल कर ले। शहीद अल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्ला हुवा, अल्लाह ताला फरिश्ते और अहले इल्म इस बात की गवाही देते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और वो अदल को कायम रखने वाला है और इस गालिब और हिकमत वाले के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। इस आयत का नंबर नोट कर लें। इल्म और इल्म वालों के दर्जात को समझने के लिए इससे खूबसूरत आयत कोई नहीं है। क्यों? इसमें अल्लाह ने अपने और फरिश्तों के नाम के साथ उलुल इल्म का नाम लिया, तो ज़िंदगी के आखिरी दम तक इल्म से अपना ताल्लुक जोड़ते जाइए। फिर फरमाया इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक दीन तो अल्लाह की नज़र में या अल्लाह के नज़दीक इस्लाम है। और अहले किताब अपने पास इस इल्म के आ जाने के बाद आपस की सरकशी और हसद की बिना पर इख्तलाफ करते रहे और अल्लाह ताला की आयतों के साथ जो भी कुफर करे तो अल्लाह ताला जल्द हिसाब लेने वाला है। फिर भी अगर वो आपसे झगड़ें तो आप कह दीजिए कि मैं और मेरे ताबेदारों ने अल्लाह ताला के सामने अपना सर तस्लीम खम कर दिया। दुआ करें हमें भी इसी की तौफीक हो जाए। और अहले किताब से और अनपढ़ लोगों से कह दीजिए कि क्या तुम भी इताअत करते हो, बस अगर ये भी ताबेदार बन जाए तो यकीनन हिदायत वाले हैं, और अगर ये रूगरदानी करें तो आप पर सिर्फ पहुंचा देना है, और अल्लाह ताला बंदों को खूब देखभाल रहा है। तो ये थी चंद आयात जिसका मौजू क्या था कि दुनिया की चीज़ों में खोने वालों आखरत को भी याद रखो। वो कहते ना कि तू इसी रोज़ और शब में खो के न रह जा कि तेरे ज़मानों मकान और भी हैं। एक माइंड मैप देखिए आपके सामने है, एक है अल्लाह की हदूद के अंदर रहते हुए मोहब्बत होना, और दूसरा है हद से तजावज़ करना। मसलन बीवियाँ, निसा का लफ्ज़ है, नबी सल्लम को भी अपनी बीवियों से बहुत प्यार था, और हर साहिब ईमान शख्स को अपनी बीवी से प्यार होगा। यानी बीवी के साथ मोहब्बत एक मर्द की खूबी है जो कि उसको और खूबसूरत बनाती है। फिर आप देखिए औलाद से प्यार करना, ख़ुद नबी सल्लम कितना प्यार करते थे फ़ातिमा से, फ़ातिमा के बच्चों से, अम्बिया कराम के इस काफ़िले को जिसको इस बारे में हम देख रहे हैं, अपने नबी अपने बच्चों को बिस्तरे मर्ग पे भी दुआएं करते और उनसे वादे लेते हुए दिखते हैं। हज़रत इब्राहिम को कितनी मोहब्बत थी अपने बेटे इस्माइल से कि उसको अपने साथ खाना काबा की तामीर में शामिल किया, तो ये भी नबियों की सुन्नत थी। फिर इसी तरह से आप देखिए सोना और चांदी अल्लाह ने दिलों में डाला है, ये वो चीज़ें हैं कि जो हैं तो बेजान, लेकिन इंसान इनके मोहब्बत दिल में महसूस करता है। फिर अगली चीज़ माल और मवेशी, जिनके पास जानवर होते हैं वो जानवरों से प्यार करते हैं। अब ये क्या मोहब्बतें बुरी हैं? नहीं बुरी, शर्त ऊपर लिखी हुई है, देख लीजिए, अल्लाह की हद के अंदर रहते हुए मोहब्बत कीजिए। बीवी से मोहब्बत है लेकिन ये मोहब्बत नमाज से ना रोक ले। औलाद से मोहब्बत है लेकिन ये मोहब्बत रिस्के हराम कमाने पे माइल ना कर दे। सोने चांदी से मोहब्बत है लेकिन इसकी मोहब्बत कहीं इसकी ज़कात अदा करने से और इसी को ख़रीदने और बेचने के अंदर अपने वक्त को ज़ाया करने में ना लगा दे। माल और मवेशियों से मोहब्बत है लेकिन इनकी देखभाल कहीं हमें अल्लाह से दूर ना कर दे। इसके ऑपोज़िट ये सारी मोहब्बतें अगर हद से तजावुज़ कर गईं तो नाकामी है। एक तरफ कामयाबी और एक तरफ नाकामी है, फ़ैसला आपने ख़ुद करना है। दुआ इसमें हमने कैसी की कि रब्बना इन्नना आमन्ना फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना वक़िना अज़ाबन नार, ए मालिक हम ईमान लाए, हमारी ख़ताओं से दरगुजर फरमा और हमें आतिश दोज़ख़ से बचा ले। सूरत आले इमरान की खूबियों में एक खूबी नोट कर लीजिए, इसमें कोई एक भी हुक्म नहीं है, दुआओं से भरी हुई सूरत है। अगर आप इस पूरी सूरत की दुआओं को जमा करते जाएंगे तो फ़ायदा होगा। फिर आप देखिए कि इस हिस्से में आयत 17 में हमने मोमिन की खूबियाँ देखी, आपके सामने लिखी हुई आयत, सब्र करने वाले, सच बोलने वाले, फरमाबरदार, फैयाज, खर्च करने वाले खुल के, और रातों को इस्तगफार करने वाले। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला मुझे आपको ऐसे लोगों में शामिल कर दे। इसके बाद अगला रुकू शुरू हो रहा है आयत 21 से, उसका टॉपिक लिखिएगा अल्लाह ताला ही सारे इख्तियारात का मालिक है। कैसे? आइए देखिए, इन अल्लज़ीन यकफुरून बि आयातिल्लाहि व यक्तुलूनन नबीय्यीन बिगैरि हक़, जो लोग अल्लाह ताला की आयतों से कुफ्र करते हैं और नाहक नबियों को कत्ल कर डालते हैं, और जो लोग अदल और इंसाफ की बात कहें इनको भी कत्ल कर डालते हैं, तो ये नबी इन्हें दर्दनाक अज़ाब की खबर दे दीजिए, इनके अमल दुनिया और आखरत में गारत हैं और इनका कोई मददगार नहीं। कि आपने नहीं देखा जिन्हें एक हिस्सा किताब का दिया गया है वो अपने आपस के फ़ैसलों के लिए अल्लाह ताला की किताब की तरफ बुलाए जाते हैं, फिर भी एक जमात इनकी मुंह फेर कर लौट जाती है। इसकी वजह इनका ये कहना है कि हमें तो गिने चुने दिन चंद ही दिन आग जलाएगी, इनकी घड़ी घड़ाई बातों ने इन्हें इनके दीन के बारे में धोखे में डाल रखा है। बस क्या हाल होगा, ज़रा सा सोचिए, क़यामत के दिन की सख्ती का तذکرہ है। बस क्या हाल होगा जबकि हम इन्हें इस दिन जमा करेंगे जिसके आने में कोई शक नहीं, ला रही बफी, और हर शख्स को अपना अपना किया पूरा पूरा दिया जाएगा और इन पर जुल्म ना किया जाएगा। करना क्या है? मालिक का दर खटकाइए। एक और दुआ आ गई, कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तूतिल मुल्क मन तशा, आप कह दीजिए अल्लाह है तमाम जहान के मालिक, तो जिसे चाहे बादशाही दे, जिससे चाहे सल्तनत छीन ले, तो जिसे चाहे जिल्लत दे, तेरे ही हाथ में सब भलाई है, बेशक तू हर चीज़ पर कादिर है, तू ही रात को दिन में दाखिल करता है और दिन को रात में ले जाता है, तू ही बेजान से जानदार पैदा करता है और तू ही जानदार से बेजान पैदा करता है, तू ही है कि जिसे चाहे बेशुमार रोजी देता है। आमीन तो कहिए। आपको पता है कि कर्ज़ों में डूबे हुए लोगों के लिए ये खूबसूरत दुआ है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, मोमिनों को चाहिए कि ईमान वालों को छोड़कर काफिरों को अपना दोस्त न बनाएं, और जो ऐसा करेगा वो अल्लाह ताला की किसी हिमायत में नहीं। ये इनके शर से किस तरह बचाव मकसूद हो, अल्लाह ताला खुद तुम्हें अपनी ज़ात से डरा रहा है। इस पे सोचिए, 3 दफ़ा अल्लाह आपको अपनी ज़ात से डराता है। भाई युहज़्ज़िरुकुमुल्लाहु नफ्सा, अल्लाह करे कि आज हम भी डर जाएं। अल्लाह ताला हमारे दिल में अपना पक्का सच्चा डर डाल दे, हम अल्लाह ताला की नाफरमानियों से बच जाएं और अल्लाह ताला ही की तरफ लौट कर जाना है। कह दीजिए कि तुम अपने सीनों की बातें छुपाओ या ख्वाह जाहिर करो, अल्लाह ताला बहरहाल जानता है। आसमानों और ज़मीन में जो कुछ है सब इसे मालूम है, और अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। जिस दिन हर नफ्स शख्स अपनी की हुई नेकियों को और अपनी की हुई बुराइयों को मौजूद आ पा लेगा। सोचिए, यौम तजिदु कुल्लु नफ्सिम मा अमिलत मिन खैरिम मुहदरा, आपके इर्द गिर्द आपकी बुराइयों ने ढेर लगाया हुआ है, या खूबियों ने, अच्छी चीज़ों ने, वह मामिलत मिन सुइन। होगा क्या, जिस दिन हर शख्स अपनी की हुई नेकियों को और अपनी की हुई बुराइयों को मौजूद पा लेगा, आरजू करेगा कि काश इसके और बुराइयों के दरमियान बहुत सी दूरी होती। दुनिया में तो अपनी बुराइयों उसको दिल से लगा के रखते हैं ना, छुपा छुपा के रखते हैं अपनी चीज़ें, पासवर्ड लगाते हैं, लॉकन हो जाते हैं उन चीज़ों के साथ, किसी को बता ना चले, कोई देखे ना, क़यामत के दिन भागेंगे, अल्लाह मेरे सेलफोन को मुझसे दूर कर दो, मैं गंदी चीज़ें इसमें देखता था, इस हेडफोन को मेरे से दूर कर दो, मैं गंदी बातें सुनता था इससे। उस दिन तो इंसान भागेगा, बिजली के करंट की तरह ये बुराइयाँ उसको लगेंगी। फरमाए वयुहज़्ज़िरुकुमुल्लाहु नफ्सह, अल्लाह ताला तुम्हें अपनी ज़ात से डरा रहा है, और अल्लाह ताला अपने बंदों पर बड़ा ही मेहरबान है। दुआ कीजिए आज हम डर जाएं। जितना ज़्यादा अल्लाह ताला का डर दिल में आएगा, उतना ज़्यादा हम इससे डरेंगे। तन्हाई के गुनाहों से बचना आज बहुत मुश्किल हो गया। पहले को बुराई देखने सुनने के लिए कहीं जाना पड़ता था, किसी को बुलाना पड़ता था। आज तो घर के अंदर रहते हुए किसी दूसरे को पास बैठे खबर ना मिले और आप अपनी स्क्रीन पे कुछ भी देखें। तो यहाँ चंद सेकंड के लिए गौर कीजिए, मैं अपने फ़ोन से क्या देखती हूँ, क्या सुनती हूँ? मुझे जो अल्लाह ने नेमतें दी हैं, ये मेरी अच्छे कामों में इस्तेमाल हो रही हैं या बुरी? तौबा करके अगर इंसान आज से इसलाह कर ले तो यही चीज़ें उसकी खैर का ज़रिया बनेंगी। इसके बताए 31 से जो अगला रुकू शुरू हो रहा है, इसका टॉपिक लिखिए, तमाम अंबिया कराम का दीन एक है। आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि इस बारे में रसूलों के साथ रिश्ते जोड़ने के लिए कितनी खूबसूरत चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं। शायद कभी पहले हमने इस अंदाज़ से इस बारे को सोचा भी ना हो। तो आज जब मैं और आप यहाँ से उठें, तो हमारे दिल अल्लाह के नबियों की मोहब्बत में चूर हों, कभी नूह की मोहब्बत, कभी इब्राहिम की, कभी इस्माइल की, और ख़ास तौर पे अब इस रुकू में हम आले इमरान यानी इमरान के घर वालों से मोहब्बत करना सीखेंगे। आइए देखते हैं आयत 31 से। कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबेउनी, कह दीजिए अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत रखते हो तो मेरी ताबेदारी करो, खुद अल्लाह ताला तुम से मोहब्बत करेगा और तुम्हारे गुनाहों को माफ़ कर देगा। दुआ कीजिए अल्लाह में नबी की इत्तबा की तौफीक दे। ये है इस पारे की आयत तदब्बर, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा। इत्तबा किए बगैर मोहब्बत का हक नहीं हो सकता। नाते पढ़िए, शौक़ से पढ़ें, दुरूद पढ़िए, शौक़ से पढ़िए, सलाम पढ़ें, शौक़ से पढ़ें, लेकिन इत्तबा किए बग़ैर आप इन चीज़ों से नबी को खुश नहीं कर सकते। आपके घर में कोई बड़ा आए, आप उसको देखकर उसकी शान में कसीदे पढ़ें, उसके हाथ चूमें, उसके पाँव के नीचे हाथ रखें, लेकिन वो आपसे कहे बेटा पानी देना, वो नहीं दे सकती, इधर आ जाओ मैं नहीं आती, ये ना करो मैं तो करूँगी, कितना को खुश होगा? इसी से समझिए कि नबी सल्लम जिस चीज़ से आपकी मेरी सबसे ज़्यादा खुश होंगे वो इत्तबा है, पैरवी है, फॉलो करना है, और अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक दे। और अल्लाह ताला बड़ा बख्शने वाला मेहरबान है। और फ़ायदा क्या होगा कि अल्लाह की मोहब्बत मिलेगी। कह दीजिए कि अल्लाह ताला और रसूल की इताअत करो, अगर ये मुँह फेर लें तो बेशक अल्लाह ताला काफिरों से मोहब्बत नहीं करता। बेशक अल्लाह ताला ने तमाम जहान के लोगों में से आदम अलैहिस्सलाम और नूह अलैहिस्सलाम और इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ख़ानदान और इमरान के ख़ानदान को मुंतखब फरमाया। दुआ कीजिए अल्लाह हमारे घर वालों को भी चुन ले। कि ये सब आपस में एक दूसरे की नस्ल से हैं और अल्लाह ताला सुनता और जानता है। अब यहाँ से किस्सा शुरू होता है बीबी मरियम और उनकी माँ का। जब इमरान की बीवी ने कहा कि मेरे रब, मेरे पेट में जो कुछ है इसे मैंने तेरे नाम आज़ाद करने की नज़र मानी, तो मेरी तरफ़ से कबूल फरमा, यकीनन तो खूब सुनने वाला और पूरी तरह जानने वाला है। पहले तो यहाँ रुकिए। आज की माँ को अपने बच्चों से मोहब्बत का सबसे बेहतरीन इजहार इस दुआ पे अमल करके, इन्नी नज़र तु लका माफी बतनी मुहर्ररा। जितनी सिस्टर्स जो प्रेग्नेंट हैं या जो आगे मुस्तकबिल में अल्लाह ताला बच्चा देगा, उनके लिए ये आयत हुज्जत है। पेट के बच्चों को अल्लाह की नज़र करेंगे तो आज जो दुनिया में मौजूद है वो हमारे हाथ में आएंगे। आज बच्चों से माँ बाप खुद बेबस हो चुके, क्योंकि हमने उस वक़्त तो उनके लाड़ देखे, बेबी शावर किए और शॉपिंगें करने बाज़ारों में घूमते रह गए और बच्चे हमारे हाथ से चले गए। बापों ने वो दुआ ना पढ़ी जिससे शैतान से बचना था, अल्लाह मजन्निबना शैतान व जन्निबिश शैतान। माओ ने प्रेगनेंसी के दौरान न गुना छोड़ा देखना, न सुनना, झूठ बोलना, तो बच्चे तो फिर ऐसे ही होंगे। कितनी अकलमंद माँ है जिसने बच्चे के दुनिया में आने से पहले नज़र मानी। अब हुआ क्या देखिएगा। जब बच्ची को जना तो कहने लगी है, परवरदिकार मुझे तो लड़की हुई है। अल्लाह ताला को खूब मालूम है कि क्या औलाद हुई, और लड़का लड़की जैसा नहीं होता। हम कहते हैं लड़की लड़के जैसी नहीं होती, हमारे यहाँ डिस्क्रिमिनेशन है। अल्लाह कहता नहीं, लड़का लड़की जैसा नहीं होता, तो फ़र्क क्या। मुराद है कि अल्लाह ने इस लड़की यानी मरियम से जो काम लेना है वो लड़का नहीं कर सकता। अकेली औरत तो बच्चा पैदा कर सकती है, अकेला मर्द बच्चा पैदा नहीं कर सकता। हज़रत ईसा की पैदाइश इस बात की दलील थी। ये अलग बात है कि अल्लाह हिदायत दे, आज लैस बिन निज़म के गुर देखिए कि पहले दो औरतों की शादी होती है। मैं ये खुशाप वालों को परेशान नहीं कर रही, लेकिन आपको ज़रा बता दूं कि जिनको आप मॉडर्न कहते हैं, जिनको आप एडवांस कहते हैं, वहाँ क्या हो रहा है। बाहर के मुल्कों में औरतों और मर्द की शादी जैसे आज हमारे यहाँ होती है, इसी तरह दो औरतों की शादी भी जायज़ है। यानी अगर ये जमजम शादी हाल वेस्ट के किसी कंट्री में होता तो यहाँ शादी जब होती तो ज़रूरी नहीं था कि लड़के लड़की की शादी हो, दो लड़कों की और दो लड़कियों की भी होती है। और फिर दो लड़कियों की शादी के बाद बच्चा कहाँ से आता है, वो भी आता है फितरत के निज़ाम को बिगड़ने के जो रास्ते बाहर आपको खुले दिख रहे हैं। अल्लाह ना करे चंद सालों में वो हमारे मुल्कों में भी आ जाएं और हम अल्लाह के इस कानून से रुकें। अगर इल्म को आम नहीं करेंगे तो यहाँ भी आ जाएगा। अल्लाह ताला हमें इससे महफूज रखे। नाम क्या रखा बच्ची का? मैंने इसका नाम मरियम रखा है। आप भी अपनी होने वाली बच्चियों के नाम मरियम रख लीजिए। ये मैसेज हर उसके लिए है जो मुझे भी मैसेज करके पूछते हैं कोई लड़कियों के अच्छे नाम तो बताइए। तो मैं कहती हूँ अल्लाह ने इतने प्यारे नाम बता दिए हैं, तो मरियम नाम नोट कर लीजिए, अगर किसी के बच्ची होगी तो उसका रखिएगा। और मैंने इसे और इसकी औलाद को शैताने मरदूत से तेरी पनाह में दिया। ये है करने का काम। अक्लमंद नानी या दादी ऐसी होती है कि बच्चों को पैदा होने से पहले शैतान से बचाए। आज पोलियो के इंजेक्शन लगते हैं, बच्चों को पैदा होने से पहले ही माँ को इंजेक्शन लगने शुरू हो जाते हैं, तो शैतान से बचने का इंजेक्शन भी क्या है, आउज़ु बिल्ला। बस इसे इसके परवरदिगार ने अच्छी तरह कबूल फरमाया और इसे बेहतरीन परवरिश दी। इसकी खैर खबर लेने वाला ज़करिया अलैहिस्सलाम को बनाया। जब कभी ज़करिया अलैहिस्सलाम इनके हुजरे में जाते, इनके पास रोज़ी रखी हुई पाते, वो पूछते मरियम ये रोज़ी तुम्हारे पास कहाँ से आई है? वो जवाब देती अल्लाह ताला के पास से है, बेशक जिसे अल्लाह चाहे बेशुमार रोज़ी दे। अल्लाह हमारा भी अकीदा इतना ही पुख्ता कर दे कि रिस्क देने वाला अल्लाह है, बाबा जी नहीं है। इसी जगह ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अपने रब से दुआ मांगी और कहा मेरे परवरदिगार मुझे अपने पास से पाकीज़ा औलाद अता फरमा, बेशक तू दुआ का सुनने वाला है। ये भी नोट कीजिए, ज़करिया ने आके बीबी मरियम को नहीं कहा कि मरियम तू भी मेरे लिए दुआ कर दे कि मुझे बच्चा मिले। आज हम फौरन नेक लोग समझते हुए कुछ लोगों के पास दुआ करने चल पड़ते हैं, तो याद रखिए जो दुआ आप खुद करेंगे उसका ज़्यादा फ़ायदा होगा। यहाँ से शिर्क का कला कमा होता है कि दुआ खुद मांगिए, किसी की कब्र पे खड़े होकर दुआ मांगी तो शिर्क हो जाएगा। उसमें एक शुबा आ जाता है कि इस बुज़ुर्ग से हम कुछ मांगने आए, अल्लाह तो हर जगह सुनता है। अब मरियम अलैहिस्सलाम की पैदाइश की खुशखबरी तो उधर थी, हज़रत ज़करिया को अपनी फ़िक्र पड़ी। दुआ मांगी, जवाब क्या मिला? बस फरिश्तों ने इनको आवाज़ दी जब वो हुजरे में खड़े नमाज़ पढ़ रहे थे कि अल्लाह ताला तुझे याह्या की यकीनी खुशखबरी देता है, जो अल्लाह के कलमे की तस्दीक करने वाला, सरदार, नफ्स पे काबू पाने वाला और नबी है, नेक लोगों में से है। कहने लगे मेरे रब, मेरे यहाँ बच्चा कैसे होगा? तो दुआ क्यों की थी? बंदा पहले दुआ कर लेता है, फिर जब खुशखबरी मिलती है तो कहता है होगा कैसे, मैं बिल्कुल बूढ़ा हूँ और मेरी बीवी बाँझ है। फरमाए इसी तरह अल्लाह ताला जो चाहे करता है। कहने लगा परवरदिगार मेरे लिए इसकी कोई निशानी मुकरर कर दे। फरमाया निशानी ये है कि 3 दिन तक तू लोगों से बात न कर सकेगा, सिर्फ इशारे से समझाएगा। तो अपने रब का जिक्र कसरत से कर और सुबह शाम इसकी तस्बीह बयान करता रहे। क्या पता चला कि जब अल्लाह कोई नेमत दे तो शुक्राने के तौर पे और शुक्र कीजिए। पार्टी और दावत और खुशखबरी, आज तो बच्चे की पैदाइश की खबर मिले तो लोग क्या कुछ करने लगते हैं। तो यहाँ हमने क्या सीखा कि बस दफ़ा हम बहुत सारे इंजेक्शन लगवा के बच्चे को यानी दवाइयों और बीमारियों से तो दूर करते हैं लेकिन शैतान से महफूज नहीं करते। आपने मैंने क्या करना है, पहली बात है कि अपने बच्चों के लिए दुआएं कीजिए, ताल्लुक़ जोड़िए, रिश्ते जोड़िए, फिर अपने बच्चों को दुआएं दीजिए ताकि वो भी अपने लिए कोशिश करें। अपने बच्चों को अल्लाह की पनाह में दीजिए। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं कि नबी सल्लम हज़रत हसन और हुसैन के लिए इन अल्फाज़ में अल्लाह ताला से पनाह मांगते थे। कैसे? अल्लाह की पनाह में आप सब, अब जिन्होंने बाद में आकर बच्चों के लिए दुआ करानी है और ख्वाहिश होती है कि कुछ ना कुछ उनके साथ किया जाए, तो ये दुआ सीख लीजिए। उईज़ुकुमा बिकलिमातिल्लाहित्तामाती मिन कुल्ली शैतानिम व हामतिम व मिन कुल्ली ऐनिल्लामतिन, कि मैं तुम दोनों के लिए पनाह मांगता हूँ अल्लाह के पूरे कलेमात के ज़रिए, हर शैतान से, हर जहरीले कीड़े, सांप बिच्छू वगैरह से और हर नज़रे बद वाली आँख से। फिर फरमाते तुम्हारे बाप यानी इब्राहिम, इसहाक और इस्माइल को भी इन्हीं कलेमात के ज़रिए पनाह देते थे। ये अबू दाऊद की रिवायत है 4737। याद कीजिएगा और अपने बच्चों को ये दुआएँ दिया करें। उईज़ुकुमा बिकलिमातिल्लाहित्तामति मिन कुल्ली शैतानिम व हामतिम व मिन कुल्ली ऐनिल्लामतिन। इसी तरह से आप देखिए कि इसमें हमने एक दुआ सीखी है, जिनके भी बच्चे नहीं हो रहे, बच्चों को हासिल करने का वजीफ़ा नोट कर लीजिए। रब्बी हबली मिल लदुन का ज़ुर्रियतन तय्यिबतन इन्नका समीउद दुआ। ऐ मेरे परवरदिगार मुझे अपने पास से पाकीज़ा औलाद अता फरमा, बेशक तू दुआओं को सुनने वाला है। 36-37 में पढ़ा। अल्लाह ताला हमें इस पे अमल करने वाला बनाए।